पिंकेश कुमार के आवाज में बीए प्रथम वर्ष हेतु अध्याय न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ विशेष स्वार्थ भी होते हैं। व्यक्ति के विचारों और उसके स्वार्थ में इस प्रकार के भेद होने के कारण उसमें परस्पर संघर्ष नितांत स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त शासन कार्य करते हुए शासक वर्ग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। इस स्थिति में सदैव ही एक ऐसी सत्ता की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों को हल कर सके और शासक वर्ग को अपनी सीमाओं में रहने के लिए बाध्य कर सके। इन कार्यों को करने वाली सत्ता का नाम ही न्यायपालिका है। राज्य के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु यदि न्याय करने में पक्षपात किया जाता है, अनावश्यक विलंब होता है या न्याय विभाग के अन्य किसी प्रकार का दोष है तो जनजीवन नितांत दुष्पूर्ण हो जाएगा। न्याय विभाग के संबंध में ब्राइस कहते हैं, न्याय विभाग की कुशलता से बढ़कर सरकार की उत्तमता की कोई दूसरी कसौटी नहीं है, क्योंकि किसी और चीज़ से नागरिक की सुरक्षा और हितों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि उसके इस ज्ञान से कि वह एक निश्चित शीघ्र पक्षपाती न्याय शासन व्यवस्था पर निर्भर रह सकता है। वर्तमान समय में तो न्यायपालिका का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अभियोगों के निर्णय के साथ साथ न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षा का कार्य करती है। न्यायपालिका के निम्न कार्य हैं। पहला, अभियोगों का निर्णय। विभिन्न व्यक्तियों में विचारों और स्वार्थों में भेद होने के कारण दीवानी, फौजदारी और माल संबंधी विवाद उत्पन्न होते हैं और इनका कानून के आधार पर विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। दूसरा, कानून की भाषा सदैव स्पष्ट नहीं होती है और अनेक बार अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, यथा कानून के अधिकारपूर्ण व्याख्या करने और स्पष्ट करने का अधिकार है। तीसरा, औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। कानून का स्वरूप चाहे कितना भी विस्तृत क्या न हो, न्यायालय में अनेक विवाद उपस्थित होते हैं जिसका निर्णय बनवान कानून के द्वारा निर्णय नहीं होता। अतः स्वाभाविक तथ्य के सिद्धांत का लेकर न्यायाधीश धर्म, औचित्य तथा सत्य के आधार पर निर्णय करते हैं तो इस कारण इस कानून का निर्माण होता है, जिसे केस लॉ या न्यायालय द्वारा निर्मित कानून कहते हैं। चौथा, व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार की रक्षा। व्यक्ति की स्वतंत्रता दो प्रकार की बाधा उत्पन्न होते हैं, एक व्यक्ति द्वारा और राज्य द्वारा। न्याय विभाग इन दोनों ही बाधाओं को दूर कर व्यक्ति की स्वतंत्रता और इसकी रक्षा करता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति यह है कि व्यक्ति और राज्य के संबंधों की संविधान द्वारा ही मर्यादित किया जाता है। अतः कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संवैधानिक या कानूनी मर्यादा भंग करने पर न्यायालय की शरण लेकर व्यक्ति उन्हें ऐसे कार्य करने से रोक सकता है। चौथा, संविधान के रक्षण का कार्य। न्याय विभाग संविधान की पवित्रता तथा प्रतिपादित व्यवस्था का रक्षा करता है। संविधान द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। स्थिति में व्यवस्थापिका कार्यपालिका संविधान के प्रतिकूल कार्य करते हैं तो न्यायपालिका इस असंवैधानिक घोषित करते हुए संविधान की रक्षा करती है। चौथा, परामर्श संबंधी कार्य। न्यायपालिका निर्णय देने के साथ साथ अनेक देशों में कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देने का कार्य करती है यदि व्यवस्थापिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा मांगा जाए। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने प्रायः सरकार को वैधानिक और कानूनी पर परामर्श दिया है। कनाडा में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है कि गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श दे। सातवां, घोषणात्मक निर्णय प्रदान करना। कभी कभी या जाने अनजाने में व्यवस्थापिका ऐसे कानून का निर्माण करती है जो स्पष्ट या पूर्व निर्धारित कानूनों के विरुद्ध होते हैं। न्याय द्वारा ऐसे कानूनों के संबंध में घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार होता है। छठा, लेख यानी रिट्स जारी करना। सामान्य नागरिकों को या सरकारी अधिकारियों के द्वारा जब अनुचित अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य किया जाता है, न्यायालय उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए विविध प्रकार के लेख जारी करती है। इसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख आदि प्रमुख है। नवा, विविध कार्य। उद्योग कार्य के अंतर्गत न्यायालय विविध कार्य करती है, जैसे न्यायालय अपने अधीन विविध कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, सामिक धन के ट्रस्टी की नियुक्ति करते हैं, वसीयतनामे को रजिस्टर करते हैं, अल्पवयस्कों के संरक्षण की व्यवस्था करते हैं, तथा मृत व्यक्तियों की संपत्ति का प्रबंध करते हैं जिनका कोई उत्तराधिकारी प्रबंधक न हो। अमेरिकी राज व्यवस्था में न्यायपालिका को सदैव से बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। भारत में न्यायपालिका ने 1980 से ही न्यायिक सक्रियता की धारणा को अपनाकर अपनी स्थिति और शक्ति में निरंतर सुधार करते हुए राजनीतिक व्यवस्था में अपने लिए अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। न्यायपालिका के प्रकार या न्यायपालिका के संबंध में दो स्थितियां, प्रथम स्वतंत्र न्यायालय और दूसरा प्रतिबद्ध न्यायालय। प्रतिबद्ध न्यायालय का आशय ऐसी न्यायपालिका है जो देश की सरकार और राजव्यवस्था पर जुड़ी हुई मूलभूत विचारधाराओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। प्रतिबद्ध न्यायपालिका शासन पर नियंत्रण नहीं रखती, यह तो उस प्रकार से शासन नीति को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध रहती है जैसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। समानता उदारवादी लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के विचार को और सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं, दक्षिणपंथी सर्वाधिकार और साम्यवादी विचारधारा पर में प्रतिबद्ध न्यायालय की धारणा को मान्यता प्राप्त है। भारत में 70 से 73 के वर्षों में कांग्रेस दल से जुड़े कुछ युवा तत्वों और वामपंथी तत्वों द्वारा प्रतिबद्ध न्यायपालिका को अपनाने की बात बताई गई थी, लेकिन इस विचार को समान स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय है, न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और उसके द्वारा विविध प्रकार के कार्य किए जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका इस प्रकार के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि वह स्वतंत्र हो। इससे आशा है कि न्यायपालिका के कानूनों की व्याख्या करने और न्याय प्रदान करने के संबंध में स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें कर्तव्य पालन में किसी से अनुचित तौर पर प्रभावित नहीं होना चाहिए। सीधे साधे शब्दों में इसका आशय यह है कि न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी राजनीतिक दल, वर्ग विशेष सभी दबावों से मुक्त होकर कर्तव्यों का पालन करें। स्वतंत्रता का महत्व या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता। जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो तभी वो अपने विविध कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकन राष्ट्रपति ट्राफ्ट ने कहा, सभी मामलों में चाहे वे व्यक्ति तथा राज्य के बीच हों, चाहे अल्पमत और बहुमत में बीच हों, आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हों, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। गार्नर लिखते हैं, न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उसमें उच्च उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया हो। आवश्यकता क्यों है? इसका पहला कारण है लोकतंत्र की रक्षा हेतु। स्वतंत्रता, समानता लोकतंत्र शासन के प्रतीक होते हैं। इसकी रक्षा हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहता है। न्याय की रक्षा हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। यदि वो बाहरी दबाव में रहेंगे तो पक्षपातपूर्ण निर्णय देंगे। तीसरा, संविधान की रक्षा हेतु। यदि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका संविधान में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका संविधान की धाराओं का स्पष्ट व्याख्या करती है और उनके व्यवस्थापिका द्वारा संविधान के विरुद्ध पारित किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित करती है। चौथा, नागरिक अधिकारों की रक्षा। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होती है तो वह नागरिक अधिकारों की रक्षा दक्षतापूर्वक करती है। न्यायमूर्ति बोस ने अपने संदर्भ में कहा था, यह हमारा कर्तव्य और विशेषाधिकार है कि अधिकार जिन्हें मूलाधिकार का नाम प्रदान किया गया है मूलभूत बने रहे और न तो संसद न ही कार्यपालिका स्वतंत्रताओं को नियंत्रित करने में संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करे। हम भारतीय नागरिकों की रक्षा करने और यह देखने के लिए है कि इन स्वतंत्रताओं को संसदीय व्यवस्थापन का प्रशासनिक कृत्य द्वारा अत्यधिक सीमित या समाप्त न कर दिया जाए। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के उपाय निम्न है। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। न्यायाधीशों को नियुक्ति के तीन ढंग प्रचलित हैं। एक, जनता द्वारा निर्वाचन। मोंटेस्क्यू के शक्ति प्रधान सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण फ्रांस में न्यायाधीशों को जनता के द्वारा निर्वाचित होने की पद्धति को अपनाया गया और वर्तमान स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों और अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में प्रचलित है। परंतु यह दल न्यायाधीशों की दलबंदी से जुड़े होता है और इसमें न्यायाधीश को पुनः चुने जाने की संभावना को बनाए रखने के लिए मतदाताओं को उचित अनुचित रूप से प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। अतः वह न्यायाधीश कम राजनीतिक ज्यादा होंगे। लोस्की ने कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति अधिक अच्छी है। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। अमेरिकी संघ के कुछ राज्य, सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसे न्यायाधीशों की निष्पक्षता और प्रतिबद्धता बनी नहीं रहेगी और वे राजनीतिक दल को संतुष्ट करेंगे, व्यवस्थापिका को संतुष्ट करने की कोशिश में रहेंगे कि उन्हें किसी प्रकार बना दिया जाए। तीसरा, कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में निर्वाचकों न्यायाधीशों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है और विश्व के लगभग सभी देशों में यही पद्धति है। कार्यपालिका द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग दुरुपयोग न किया जा सके इसके लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि कार्यपालिका सर्वमान्य न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों या स्थायी न्यायिक समिति के परामर्श के आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति करें। लॉस्की लिखते हैं, इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे हैं, परंतु यदि आवश्यक है न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। न्याय स्वतंत्रता को बनाए रखने के दूसरे अन्य उपाय, लंबी पदावधि होनी चाहिए जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा अवकाश प्राप्त के अवधि तक ही रहना चाहिए। तीसरा, न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा रहनी चाहिए और उसे दल विशेष या सरकार की दया पर निर्धारित नहीं होनी चाहिए। इस कारण अधिकांश राज्यों में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है। चौथा, न्यायाधीशों का वेतन निश्चित होना चाहिए और उनके शासनकाल में न्यायाधीशों वेतन घटाना नहीं चाहिए। हैमिल्टन अपनी पुस्तक राजनीति के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स में लिखते हैं, यह मानव स्वभाव है कि जो भी व्यक्ति अपने आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है उसके पास संकल्प शक्ति का ही प्रबल होता है। पांचवा, न्यायाधीशों की योग्यता उच्च योग्यता होनी चाहिए जिसकी न्याय निष्पक्षता और कार्यकुशलता सर्वमान्य है। छठा, अवकाश प्राप्त के बाद वकालत पर निषेध होना चाहिए। शक्ति के दूसरे प्रयोग को रोकने के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों का अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत न कर सके। कम से कम उन न्यायालयों या क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय में वकालत न किया जा सके। सातवां, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए। एक ही व्यक्ति के सत्ता, अभियोक्ता और साथ ही साथ न्यायाधीश पद पर होने स्वतंत्र न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इसी बात की दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने की बात कही गई है और भारतीय संघ के अधिकांश इकाइयों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। उपयुक्त व्यवस्थाएं की जाने पर इस बात की आशा की जा सकती है कि न्यायाधीश स्वतंत्रतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क की व्यवस्था कीजिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायालय के संगठन कार्य और महत्व पर प्रकाश डालिए, न्यायपालिका का महत्व समझाइए और स्वतंत्र बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, भारत में कहां तक ये अपनाए गए, न्यायपालिका के कार्य की व्याख्या कीजिए, स्वतंत्रता इसके लिए क्यों आवश्यक है और स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपाय बताइए न्यायपालिका की स्वतंत्रता के। चौथा, आधुनिक राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को विचेतन कीजिए। तीसरा, कार्यपालिका का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार बताइए और व्यवस्थापिका के मुख्य कार्य बताइए। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा BA प्रथम वर्ष हेतु पुखराजन की पुस्तक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत के लिए सुजीत कुमार हेतु 21 दिसंबर 2007 को किया गया।